Om Shanti. Good morning. ज्ञान सरोवर के परिसर में सुबह सुबह उठने का आनंद कुछ और ही होगा और यहाँ का प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका लाभ आप सभी ले रहे होंगे। राजयोग शिविर के अंतर्गत आज का दूसरा सत्र जो राजयोग का मुख्य आधार पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय। कल आप सभी ने आत्मा की वास्तविकता के बारे में सुना कि आत्मा की वास्तविकता क्या है। आत्मा सतोगुणी है। जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो फिर भी दुनिया में एक ही मान्यता है कि हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, चाहे उसको किसी ने सोल कहा, रूह कहा, शक्ति कहा, एनर्जी कहा, आत्मा कहा, है उस आत्मा की ओर, उस चैतन्य शक्ति की ओर इशारा। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां आज दुनिया में इतने मत मतांतर हो गए कि आखिर भी सत्य क्या है, ये एक अनसुलझी पहेली है। क्योंकि परमात्मा को लेकर के देश विदेश में अनेक धर्मों में अलग अलग मान्यताएं बना दी है। कुछ समय पहले एक बहन मेरे सामने आकर कहने लगी कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं, भिन्न भिन्न समय प्रति समय अलग अलग रूप में अवतार लिए। वो बच्चा मां से कहता है कि भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं, और अगर ये सारे भगवान हैं तो इन सबका हेड कौन है। परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ये सब भगवानों का हेड कौन। अब वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती, इसलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है कि चलो मंदिर चलो, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, तो वो बच्चा मना कर देता है, यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज्ड हो जाता हूं, वेयर शुड आई फोकस माय माइंड। इसलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है क्योंकि उसको ये फील होता है आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम। मां को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है, लेकिन शायद ये उसका प्रॉब्लम नहीं है। आज की जेनरेशन जब ये सवाल पूछते हैं माता पिता को, माता पिता के पास जवाब नहीं होते हैं। और कई मर्द तो छोटे बच्चे को यही कहते हुए चुप करा देते हैं, बड़ा होगा ना समझ जाएगा सब, लेकिन बड़ा होने के बाद भी नहीं समझ पाता है। जब कहा जाता है कि ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, सत्य एक होना चाहिए, 10 बातें हमारे सामने हो और हम कहे सभी सत्य है, असंभव। तो वो सत्य क्या है जिसके विषय में आज मनुष्य इतने कंफ्यूज्ड है, वो सत्य आखिर क्या है। एक बार हमने एक व्यक्ति को एक कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, दूसरी कॉलम में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था ईश्वर कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, कंकड़ कंकड़ में भगवान है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवता है सब भगवान है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड, अगर सचमुच भगवान है तो क्या आप सबूत दे सकते हैं, कैन यू प्रूव इट। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीशन लिया होगा, व्हाट इज ट्रूथ, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है। क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है, क्या ये सभी सत्य है? क्योंकि सारी मतों को अगर देखा जाए तो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को परमात्मा कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे साकार को कहे, ये है ही नहीं कहे। तो आखिर भी ईश्वर का विषय इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जो सबसे सरल होना चाहिए, जहां इजी एक्सेस होना चाहिए, वो आज इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया है? और ईश्वर को परखने की कोई कसौटी, जैसे एक जवेरी होता है, सोना कितना कैरेट का है उसके पास एक कसौटी होती जिस पर कस कर देखता है और फिर उसकी मूल्य बताता है। ईश्वर किसको कहा जाए, उसको परखने की कोई कसौटी? ये नहीं कि यहां आए हैं ब्रह्मा कुमारियों ने जो बताया कि हमें उसको मान लेना है, नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी मतें हैं, ऑलरेडी आप इतने कंफ्यूज स्टेज में हैं, हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते। परंतु आज हम आपको एक कसौटी देते हैं जिस पर आप ये सारी मतों को कसकर देखो, सत्य है नहीं तो सत्य को समझने का प्रयत्न करो। ये कसौटी है पांच बातें। सबसे पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाए जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करें, उसको कहेंगे सत्य, क्योंकि गॉड इज वन। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं। दूसरा, ईश्वर उसको कहा जाए जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी ना हो, सुप्रीम अथॉरिटी, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, वो सर्व का है। जिसके लिए प्रार्थना की, त्वमेव माता शिपिता त्वमेव, उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है। तो सर्वोच्च शक्ति, तीसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व परे हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र। जन्म लिया तो देह है, देह है तो देह के संबंध है, तो देह और देह के संबंधों के चक्र से परे। देह लिया तो कर्म किया, कर्म किया तो उसका फल भोगना पड़ता है, तो कर्म और कर्म के फल के चक्र में हम आते हैं, परमात्मा उससे ऊपर है। और कर्म किया तो या तो वह कर्म पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा, तो पाप और पुण्य के चक्र में भी हम आते हैं, परमात्मा उस चक्र से भी परे हैं। और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता या दुख मिलता, तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते, परमात्मा उससे भी परे है। तो जो संसार के सभी चक्र से परे हो, जन्म मृत्यु का चक्र, देह देह के संबंधों का चक्र, कर्म कर्म का फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र, उन सब चक्रों से जो पर है उसको कहेंगे परमेश्वर। जिसके लिए कहा वो अजन्मा है, अकाल मूरत है, अव्यक्त मूरत है, अकर्ता भोक्ता है, तो सभी चक्र से पर है। चौथा परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी जिसको कहा जाए, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले त्रिनेत्री है, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी रचने वाले त्रिदेव है। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ लगती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज। जिसके लिए गायन है कि सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, अनंत है जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमेश्वर। तो ये पांचों बातें कसौटी है, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अब अगर एक एक मत को उठाकर देखे कि सत्य किसको कहा जाए, तो इस कसौटी के आधार पर एक एक मत को कस करके देखे, क्योंकि जब कहते ही है कि ईश्वर हमारे पिता है, ईश्वर के साथ हमारा संबंध है, तो वो संबंध कैसे जोड़ेंगे उसके साथ। जिस तरह से पशु का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, और मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्माओं का पिता परमात्मा, परम पिता उसको कहा। सर्व संबंध जिसके साथ हम सहजता से जोड़ सके। योग का मतलब ही है संबंध। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, ऐसे योग माना जोड़, संबंध या मिलन। कुछ शब्द में अगर मैं कहूं, सरल शब्द में, योग माना एक यात्रा है। यह यात्रा स्थूल यात्रा नहीं है, मन की यात्रा है। क्योंकि मनुष्य का मन जो है वो बहुत तीव्र वेगी है, कभी भी कहां भी चला जाता है ना। तो मनुष्य के मन के लिए कोई बंधन नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस कैन नॉट बिकम अ बैरियर फॉर द ह्यूमन माइंड। यहां बैठे बैठे बचपन की कोई घटना को याद करना है, कितना टाइम लगता है? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। 20 साल पीछे चला जाता है मन, और वही फाइल निकलती है जिसके विषय में हम सोचना चाहते हैं। समय इतना बीत गया, कैसे उस घटना को याद करूं? ये नहीं होता है। कोई व्यक्ति कितना भी दूर क्यों ना बैठा हो, उसको याद करना हो, ये नहीं भाई इतना किलोमीटर दूर बैठा है कैसे याद करूं, सहज है। तो मन सारी दुनिया में कहां भी चला जाता है, और मन को सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? मन को क्या पसंद है? मन को घूमना बहुत पसंद है। यहां बैठे बैठे भी कहां कहां पहुंच जाता है, कहां ना कहां घूमता रहता है। जब मन का ये नेचर है कि उसको घूमना बहुत पसंद है, तो मेडिटेशन योग माना ले चले मन को घूमने के लिए। कहां ले चलेंगे? ईश्वर के सानिध्य में ले चले, जिसके लिए वो तरस रहा था, जिसके लिए शिकायत थी कि भगवान को याद करना तो चाहते हैं लेकिन लगता नहीं है, भटक जाता है। वहां के लिए कहा भटक जाता है, और बातों में चला जाता है। क्यों नहीं याद कर पाते हैं? क्योंकि शायद पहला हमारे पास परिचय ही नहीं था, वो कौन है ये भी नहीं जानते थे, मैं कौन हूं न खुद को जानते थे न खुदा को जानते थे, तो परिचय ही नहीं था। दूसरा, मेरा क्या संबंध है उसके साथ, वो क्लियर नहीं था। एक तरफ तो कहते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे, दूसरी ओर कहा तेरे चरणों की धूल है हम, है ना। तो क्या हूं मैं? तेरे चरणों का दास हूं मैं। अब दास हूं या बच्चा हूं, दोनों एक साथ तो नहीं बन सकते। या तो दास होऊंगा या तो बच्चा होऊंगा। दास समझने से उदास रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्राप्ति नहीं है। तो इसीलिए न परिचय था न संबंध का पता था, तो स्नेह जागृत कैसे हो सकता है? और तीसरा चौथा, प्राप्ति क्या होने वाली है, उससे क्या मिलेगा ये भी पता नहीं था। इसलिए मन भटक रहा था। अब जब हम कहते हैं कि योग माना एक यात्रा है, तो इस यात्रा के तीन पड़ाव है। पहला पड़ाव है इस यात्रा का, जिसको हम कहते हैं इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, भीतर की यात्रा है, अंतर की यात्रा है। दूसरा पड़ाव इस यात्रा का है जिसको हम कहते हैं ईश्वर के सानिध्य में जाने की यात्रा है, इट्स अ जर्नी अपवर्ड्स। और तीसरा पड़ाव है इस यात्रा का जिसको हम कहते हैं इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स। सबसे पहला पड़ाव जो कहा इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, भीतर जाना है। आत्मा का ज्ञान जो प्रथम दिन मिला, प्रथम सेशन में समझा मैं कौन हूं, तो उस कॉन्शियसनेस में स्वयं को स्टेबलाइज करना, जिसको सिंपल शब्द में कहूं आत्मचिंतन। क्योंकि आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। इसीलिए आत्मचिंतन करने के लिए जितना हम मन को भीतर ले जाते हैं, तो कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो आत्मचिंतन से उस कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्टेबलाइज करना। दुनिया में भी देखा जाता, व्यक्ति जिस कॉन्शियसनेस में होता है उसी की याद सहज स्वाभाविक आ जाती है। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने आप को पिता समझता है तो कौन याद आएगा? बच्चे याद आएंगे। जब अपने को पति समझता है तो कौन याद आता है? पत्नी की याद आएंगी। जब खुद को बच्चा समझता है तो कौन याद आता है? माता पिता की याद आती है। जब खुद को दोस्त समझता है तो दोस्तों की याद आती है। जो समझेगा उसी की याद सहज आ जाती है। तो अपने को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा। परमात्मा की याद मुश्किल थी अब तक। क्यों? क्योंकि अपने को देहधारी समझते थे, मैं फलाना हूं। तो देहधारियों की ही याद आएगी, परमात्मा की याद नहीं आ सकती है। परमात्मा की याद के लिए स्वयं को उस कॉन्शियसनेस में लाना होगा कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, जिसको कहा जाता है सोल कॉन्शियसनेस। और जब उस कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं कि मैं आत्मा कैसी हूं, तो आत्मा के जो सात गुण प्रथम सेशन में हमने देखा, उस सात गुण में अपने आप को स्थित करना होगा कि मैं शांत स्वरूप, मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है? शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये मेरी वास्तविकता है। तो जब उस कॉन्शियसनेस में ले आते हैं तो परमात्मा के तरफ मन सहज चला जाता है। तो आत्मचिंतन जैसे जैसे करते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने चारों ओर एक पॉजिटिव वातावरण, पॉजिटिव एनर्जी लेवल क्रिएट करते हैं। क्योंकि ईश्वर के याद के लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, सकारात्मकता बहुत आवश्यक है। नकारात्मक विचारों से कभी कनेक्शन हो नहीं सकता है। तो इसीलिए जितना ये आत्मचिंतन करते जाते हैं, हम अपने चारों ओर एक सकारात्मक वायुमंडल क्रिएट करते हैं, या जिसको दूसरे शब्द में कहा गया है ऑरा क्लींजिंग। हर इंसान के चारों ओर एक ऑरा होता है, लेकिन बाह्य जगत के अंदर जब व्यक्ति बार बार मन से और तन से चला जाता है तो वो बाहर की बातों का प्रभाव हमारे ऑरा पर बहुत ज्यादा आ जाता है। इसलिए नकारात्मकता विचारों में भी आ जाती है, स्वाभाविक है। और जितनी नकारात्मकता आने लगती है, हमारा ऑरा जो है वो क्षीण होने लगता है, जो प्रभाव है वो क्षीण होता जाता है और नकारात्मकता बढ़ने लगती है। लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? नकारात्मक प्रभाव इतना अधिक है और वो ऑरा इतना अशुद्ध हो गया है नेगेटिव सोच सोच करके कि वो खुद व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होता है। तो आत्मचिंतन करने से हम अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, जो नकारात्मकता आ गई है उस नकारात्मकता को क्लीन करते हैं, पॉजिटिविटी को जनरेट करते हैं। ये बहुत आवश्यक है, इसलिए ये प्रथम कदम माना जाता है। दूसरा उसका फायदा ये है कि जितना हमारा नेगेटिव ऑरा होगा, डिस्चार्ज्ड ऑरा होगा, उतनी नकारात्मकता को आकर्षित अधिक करेंगे आप। कई बार आपने जीवन में देखा होगा, महसूस किया होगा, एक के बाद एक बुरी खबरें ही मिलती जाती है ना? चलते चलते पैर फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया, बच्चा फेल हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, अड़ोसी पड़ोसी ने आके झगड़ा कर दिया, कहते पता नहीं क्या है ये, एक के बाद एक जैसे बुरा ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? जितना व्यक्ति का नेगेटिव ऑरा होगा उतनी वो नेगेटिव घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आत्मचिंतन से जब हम अपने ऑरा को क्लीन करते हैं तो फिर एक के बाद एक पॉजिटिव घटनाओं को आकर्षित करते हैं। ये भी आपने कई बार अनुभव किया होगा, एक के बाद एक अच्छी खबरें मिलती जाती हैं तो क्या कहते हैं, लगता है ईश्वर बहुत मेहरबान हो गया है। ईश्वर मेहरबान हो गया ऐसा नहीं, लेकिन जितना आपका ऑरा पॉजिटिव होगा उतनी पॉजिटिव घटनाएं अपने आप आपके तरफ आकर्षित होती, ये मैग्नेट का काम करता है, सहज स्वाभाविक रीति आपके तरफ आने लगेगी। बच्चा पास हो गया, कोई नई खबर आ गई, कुछ अच्छा हो गया, बिजनेस में प्राप्ति हो गई, सभी अड़ोसी पड़ोसी आपके साथ में बहुत प्यार से व्यवहार करने लग गए, जिसके साथ भी मन मुटाव हो गया था अपने आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, तो क्या कहते हैं, अरे भाई पता नहीं क्या हो रहा है। ये अनुभव कई बार हमने किया है। भावार्थीय मेडिटेशन का ये जो प्रथम कदम है ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि आत्मचिंतन से धीरे धीरे हम आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। फिर उसके बाद दूसरा कदम, दूसरे पड़ाव पर आते हैं। जब ये एक पॉजिटिव प्लेन हमारा बन गया, पॉजिटिव ऑरा हमारा क्रिएट हुआ, तो अपने आप मन ईश्वर की ओर आकर्षित होगा। और जैसे ही ईश्वर की ओर हमारे विचार बड़े शांति के, प्रेम के और उस तरफ सहजता से चले जाते, जब ये महसूस हुआ मैं भी ज्योति पुंज हूं और मेरे पिता परमात्मा भी प्रकाश पुंज है, ज्योतिर्लिंगम है, तो उस प्रकाश पुंज की ओर सहजता से मन चला जाता है। वैसे भी मनुष्य को हमेशा प्रकाश आकर्षित करता है, अंधेरा अंदर में घुटन महसूस कराता है, लेकिन प्रकाश आनंद को महसूस कराता है। तो इसलिए जैसे जैसे हमारा ऑरा क्लीन हुआ कि मन ईश्वर की ओर जाने लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। उसमें मांगना नहीं पड़ता है कि हे प्रभु मुझे शांति दो, सुख दो, ये दो वो दो, नहीं। जैसे आप बाहर सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, सूर्य से मांगते नहीं हो कि हे सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, मांगेंगे आप खड़े रहो, उसके कांटेक्ट में आओ, अपने आप वो गर्माइश आने लगती है और कुछ ही देर में रोम रोम के अंदर गर्माइश भर जाती है। समुद्र के पास खड़े रह करके समुद्र से मांगना नहीं पड़ता है कि हे समुद्र तेरी शीतल हवा मुझे दे, उसके कांटेक्ट में आओ, अपने आप मिलने लगती है, शीतल हवाएं मिलने लगती है। कुछ ही देर के अंदर आप महसूस करेंगे रोम रोम में शीतलता भर गई। ठीक इसी तरह ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं, जैसे ही स्वयं को उस सोल कॉन्शियसनेस में स्टेबलाइज किया, मन ईश्वर के सानिध्य में जाने लगा, तो ईश्वर जो सर्व शक्तियों से संपन्न है उसकी शक्ति धीरे धीरे हम अपने अंदर ग्रहण करने लगते हैं, समाने लगते हैं, आने लगते। गाना नहीं पड़ता है कि हे प्रभु तुम मात पिता हम बालक तेरे, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लौकिक मात पिता को, शारीरिक मात पिता को हम रोज थोड़ी याद दिलाते आप मेरे मात पिता हो, प्यार है। ठीक इसी तरह ईश्वर के सामने भी रोज ये गाने की जरूरत नहीं है। गाना उसको पड़ता है जिसको विस्मृत हो गया हो, लेकिन जैसे ही स्मृति में आ जाए तो उस संबंध का आनंद, उस संबंध का सुख महसूस करने लगते हैं। इसको कहते हैं राजयोग। और तीसरा पड़ाव जब है, इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स। जब स्वयं की बैटरी को सहजता से चार्ज कर लिया हमने परमात्मा शक्ति से, परमात्मा ऊर्जा से, तो धीरे धीरे ये वाइब्रेशन हम अपने चारों ओर प्रवाहित करने लगते हैं। आप जब से आए हैं ज्ञान सरोवर में, आपको महसूस हो रहा है एक अलग दुनिया में आ गए। क्यों? यहां से स्टेशन चले जाओ ना आबू रोड, तो भी आपको लगेगा कहां आ गए हम, कहां जैसे स्वर्ग में बैठे थे और कहां आ गए फील होगा। आते ही महसूस किया, आप कई बार ऐसे गैदरिंग्स में गए होंगे, शादियों में भी 500 लोग आराम से हो जाते हैं, लेकिन वहां कोलाहल लगता है, और यहां शांति है, पता ही नहीं है कहां 500 लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, आने जाना कर रहे हैं, हर एक अपनी मस्ती में मस्त है जैसे। क्यों? ये वाइब्रेशन, जो रोज लोग मेडिटेशन करते हैं तो वो वाइब्रेशन को प्रवाहित करते हैं, वाइब्रेशन भी पूरा चार्ज हो गया है। अगर इतने बड़े कैंपस का वाइब्रेशन चार्ज हो सकता है तो आपके घर का वाइब्रेशन चार्ज नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। लेकिन रोज जब मेडिटेशन करते हैं तब वो घर का वातावरण भी चार्ज होने लगता है। आपने ये भी कभी कभी महसूस किया होगा, किसी किसी के घर जाओ आप, बड़ा सुकून लगता है। आप कह भी देते हैं आपके घर में कितनी शांति है, और किसी किसी के घर में जाओ लगता है कब चले यहां से, कब उठे, ये फील होता है। इतना नेगेटिव वाइब्रेशन, इतना हैवी होता है जो माथा भारी कर देता है और लगता है यहां से उठ जाए, चले जाए। और किसी किसी के पास, ऑफिस में भी आप जब होते हैं, कई बार आपके कलीग्स आकर के आपको कहते हैं कि आपके पास बैठते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है पता नहीं, वो वाइब्रेशन। तो जैसे कहा कि इतने बड़े कैंपस का वाइब्रेशन अगर पॉजिटिव हो सकता है तो आपके घर का भी वाइब्रेशन आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मनुष्य से ही तो बनता है। रोज सुबह शाम जब वो आत्म चिंतन करते हैं, परमात्म चिंतन करते हैं, तो वो घर के अंदर वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं। तो आप घर में भी जब आओगे तो सुकून अनुभव होगा। ये नहीं घर से भाग जाए कहीं, घर में आने का मन करेगा। इसलिए घर के वाइब्रेशंस को भी चार्ज करना जरूरी है। घर के लोग ही तो घर के वाइब्रेशन चार्ज करेंगे। तो यहां से ये जरूर सीख करके जाना कि मेडिटेशन द्वारा अपने घर के वातावरण को चार्ज करना है, जहां सुकून मिले, शांति मिले, आनंद हो और प्रेम हो, परिवार के अंदर भी प्रेम हो, ये वातावरण बने, जिसके लिए आज इंसान तरसता है। आज मोबाइल में तो हम लगे रहते हैं, सारी दुनिया के साथ जुड़े रहते हैं, और घर में क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाती है ना, ये वातावरण बन गया है। इसीलिए एक जगह हम गए थे तो वहां पर बाहर में एक बोर्ड लगा था, वाईफाई जोन। तो जो बहन मेरे साथ थी उनको मैंने कहा यहां पर वाईफाई जोन माना तो हर कोई मोबाइल पर ही लगा रहेगा, फ्री वाईफाई मिलेगा तो सब लोग मोबाइल पर होंगे, तो यहां बैठने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। कहा आप चलिए तो सही। अंदर जाकर के देखा, वाईफाई का मतलब लिखा था विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरेक्शन। हर एक को अपने मोबाइल पर चिटकी डाल करके नाम की एक बॉक्स में डाल देना होता था, और फिर अंदर जाकर के इतना सुंदर माहौल था, परिवार इतना प्यार से और खुशी से और आनंद से, जैसे कहां देखा तो बच्चे कैरम खेल रहे हैं, कहां देखा तो इतना अच्छा माहौल हो गया था घर का। लगा कि वाह, क्या वाईफाई जोन बना दिया है ना। तो शायद घर में जब जाए ना तो हमें भी अपने घर को क्या कर देना चाहिए, वाईफाई जोन बना देना चाहिए, है ना। दो चार दिन थोड़ी तकलीफ होगी कि लोग आपको शिकायत करेंगे, आपको फोन कर रहे थे लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। जैसे ही लोगों को पता चल जाएगा कि भाई 8 बजे के बाद ये फोन नहीं उठाएंगे, कोई करेगा भी नहीं और आपका घर सचमुच वाईफाई जोन हो जाएगा और इतना सुंदर माहौल क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव। यहां आए हैं तो कितनी देर आप फोन पर रहते हो, अच्छा लग रहा है ना बिना फोन के भी, तो कारोबार चल रही है ना, वहां चल रही है ना कि किसी के यहां नुकसान हो रहा है, बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है। आपको चिंता करने, क्योंकि आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आए हैं, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन वहां कारोबार को भी पॉजिटिव बना रहा है। ये मेडिटेशन का कमाल है, ये मेडिटेशन का मैजिक है। और इसलिए जब ऐसा मेडिटेशन आप करने लगो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को रिलीज करते जाओ, तो आपके साथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव होने लगेगा। ये अनुभव करके देखो, ये वास्तविकता है, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो मेडिटेशन में जैसे कहा, अब तो परिचय मिल गया, आत्मा का भी परिचय मिल गया, परमात्मा का भी परिचय मिल गया। दूसरा, अब संबंध, अब मेरा संबंध क्या है उसके साथ, जो गाया वो प्रैक्टिकल महसूस करना है। ये नहीं कि भगवान के सामने गाते रहे, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम, अब बूंद के प्यासे नहीं, अब सागर ही मिल गया है ना। तो सागर जब मिल जाए तो फिर प्यासे का है क्या। तो परमात्मा शक्ति के साथ स्वयं को जोड़ते जाना है, ये मेडिटेशन है। इसीलिए परमात्मा शक्ति, परमात्मा तो कांस्टेंट सूर्य की तरह है जो अपनी शक्ति को फैला रहा है, लेकिन हम अंधकार में थे, अपने खिड़की दरवाजे बंद किए हुए थे, तो उस प्रकाश को महसूस नहीं कर पा रहे थे। अंदर में बैठे बैठे, अंधकार में बैठे बैठे गा रहे थे, तू मात पिता हम बालक तेरे, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, क्या करें हम तो आपके चरणों के दास है। अरे क्यों दास बनो। और फिर जब प्राप्ति नहीं होती थी तो उदास रहते थे, क्या करें इतना भगवान को याद करते, भगवान भी हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं है, ये शिकायत होने लगी थी। लेकिन अब आपके मन की हर बात वो सुनेगा। यहां आपने ये अनुभव किया होगा, आप जो सोचते हैं, जिसको मिलने का सोच, वो सामने आ जाता है, होता है कि नहीं होता है? जो सोचते हैं वो जैसे हो जाता है, आपको समाचार मिल जाता है, आप सोचेंगे आज सवेरे ही मुझे ये विचार आया था और ये हो गया। आप जो सोचोगे वो हो जाए, क्यों? क्योंकि आप प्रकाश में आ गए, अंधकार से बाहर निकल आए, उस बंद कमरे से आप बाहर आ गए जहां खिड़की दरवाजे खुल गए और बाहर आ गए, उसके साथ, उस प्रकाश के साथ अपने आप को जोड़ दिया, उस संबंध के साथ जोड़ा, तो आधे से ऊपर कार्य वही आपका पूरा कर रहा है, आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा है, सोचते हैं और हो जाता है। ये हमारा संबंध है, जिसे जैसे घर के अंदर बच्चे को मांगना नहीं पड़ता है, पिताजी मुझे ये चाहिए, पिताजी मुझे ये चाहिए, आपको पता है आपके बच्चे को क्या चाहिए, आप पहले ही उसके लिए ला करके रख देते हैं या उसको दे देते हैं और वो खुश हो जाता है। ठीक इसी तरह हम भी ईश्वर के बच्चे हैं, उसको पता है मुझे क्या चाहिए, लेकिन सिर्फ सिर्फ पात्रता अपनी बढ़ाते जाओ। जैसे एक बच्चा योग्य हो, पात्र हो, पिता को सोचना नहीं पड़ता है, वो ला करके उसके लिए देता जाता है उसको, क्योंकि उसको मालूम है ये सदुपयोग ही करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। लेकिन अगर एक नालायक बच्चा हो, अयोग्य हो, तो पिता को 10 बार सोचना पड़ता है उसको देने से पहले। ठीक इसी तरह हम भी अपनी पात्रता को बढ़ाते जाए, पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाए, ईश्वर भी छप्पड़ फाड़ के देना चालू करेगा। मांगना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, सब कुछ। पात्रता जितनी हम अपनी बढ़ाते जाएंगे, अपने आप देगा वो। मांगना क्यों? कहा जाता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। मांगे क्यों? ईश्वर से भी हमारा रिश्ता ऐसा हो, हम अपने जीवन की पात्रता ऐसी बनाए, तो मांगने की जरूरत नहीं है, देने लगता है वो अपने आप। और जब देता है तो नेचुरल है, उतना प्यार हमारा भी बढ़ता जाता है। जैसे आप बच्चे को देते जाते, बच्चा इतना प्यारा है, तो बच्चे का माँ बाप से भी इतना लगाव बढ़ता जाता है। तो जब पात्रता बढ़ाई तो नेचुरल है कि ईश्वर के साथ हमारा प्यार भी पॉजिटिव पॉजिटिव को आकर्षित करता है, तो हमारा प्यार भी स्नेह भी अपने आप बढ़ने लगता है ईश्वर की ओर। और जहां स्नेह है वहां प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति, ये चारों ही आधार है स्वयं को उसके साथ जोड़ने का, कनेक्शन जोड़ने का। मेडिटेशन बहुत सिंपल है। मेडिटेशन के लिए हमें कोई ये नहीं कि ये आसन लगाने होंगे, ऐसा करना होगा, नहीं। सहजता से जो आसन में आप स्थित हो सको, उस आसन में आप बैठ सकते, कंफर्टेबल हो, जहां हमारा ध्यान बार बार शरीर के तरफ न जाए। आज मैं आपको कह दूं, अगर पद्मासन में बैठो, आपको घुटनों का प्रॉब्लम है, जबरदस्ती अगर लगा भी दिया, सुखासन में ही बैठ गए, लेकिन मेडिटेशन करना चाहते हैं, बार बार घुटनों के तरफ हमारा ध्यान जाता है, वो हमारे मेडिटेशन में बाधा बनती है। उसके बदले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो, आप नीचे नहीं बैठ सकते, ऊपर बैठो, कुर्सी पर बैठो, सहज आसन हो, जहां हमारा ध्यान बार बार शरीर के तरफ न जाए, लेकिन आत्मचिंतन करते हुए ईश्वर के सानिध्य में हम जाए। ऐसे जब मन की स्थिति होने लगे, तो आप बैठे हैं साधारण रीति, लेकिन उस मन को चार्ज कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। जैसे दुनिया में रिचार्जेबल बैटरीज होती है, उसको चार्ज करो, डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको चार्ज करो। ये चार्ज और डिस्चार्ज कैसे होती है? तो कहा जाता है कि उस बैटरी के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जब आप उसको यूज करते हो, तो वो सारे केमिकल कंपोनेंट्स डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। और जब संपूर्ण डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाए, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। फिर जब उसको चार्जर में रखते हैं, तो उस करंट से वो केमिकल कंपोनेंट्स रीऑर्गेनाइज्ड होने लगते हैं। और जब संपूर्ण रीऑर्गेनाइज्ड हो जाए, माना 100% चार्ज हो गई। आज हम बार बार ये बात सुनते हैं, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। क्यों? हमारे भीतर के कंपोनेंट्स भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। मन कुछ और सोच रहा है, वृत्ति कुछ और है, एटीट्यूड कुछ और है, भावनाएं कुछ और है। कोई भी इंटरनल कंपोनेंट ऑर्गेनाइज्ड है। यहां आप आए हो, दो दिन तीन दिन हो गए, और कुछ सीखा न सीखा हो, एक शब्द जरूर सीख लिया होगा। कौन सा? ओम शांति। ओम शांति सीख लिया। ओम शांति का मतलब क्या है? ओम शब्द के अंदर तीन अक्षर है, अ ऊ म। इंग्लिश में भी कहते ए यू एम। अ माना आचरण, ए फॉर एक्शन। ऊ माना उच्चारण, यू फॉर अटरेंस। म माना मन के विचार, एम फॉर माइंड। जीवन की ये तीन महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। लेकिन आज ये तीन कंपोनेंट भी ऑर्गेनाइज नहीं है। सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, फिर क्या कहते हैं? पता नहीं, मैं जो सोचता हूं ना, बोल क्यों नहीं पाता। अच्छा, उसके बाद कर्म में आएंगे, कुछ और ही हो जाएंगे। क्या कहेंगे? सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया? यानी सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है, किया कुछ और है। ये तीन कंपोनेंट भी ऑर्गेनाइज नहीं है, हार्मनी में नहीं है। इतनी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, जो सूक्ष्म है वो तो और भी डिसऑर्गेनाइज्ड है। विचार कुछ चल रहे हैं, भावनाएं कुछ और है, एटीट्यूड कुछ और है, परसेप्शन कुछ और है, फीलिंग्स कुछ और है, व्यवहार कुछ और है, कर्म कुछ और है। कहां ऑर्गेनाइजेशन है? इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड है, बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए तो बात बात में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कोई अच्छी भावना से कुछ कहते हैं तो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर सॉरी करना पड़ता है, माफ करना, आप मेरे मन के भाव को समझना, मेरे शब्दों को नहीं देखना, कहना पड़ता है ना। इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड है। जब मेडिटेशन में बैठते हैं, ओम शांति अर्थात अपने मन वचन कर्म को शांति में ले आओ, हार्मनी में ले आओ। जैसे जैसे उसको हार्मनी में ले आते हैं, धीरे धीरे इंटरनल मैकेनिज्म भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगती है। जो सोचेंगे वही महसूस करेंगे, फील करेंगे, वही हमारी भावनाएं होगी, वही हमारी वृत्ति होगी, वही हमारा परसेप्शन बनने लगेगा, वही हमारा व्यवहार होगा, वही हमारा कर्म, सारा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता। जब ऑर्गेनाइज्ड है तो अंदर से रिलैक्स्ड है, इसलिए कहते हैं मेडिटेशन से रिलैक्सेशन। भीतर की सारी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है तो रिलैक्स्ड है। भीतर से सारी सिस्टम जब डिसऑर्गेनाइज्ड है तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, मजा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेडिटेशन अभी करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन लाएंगे, अर्थात परमात्म शक्ति जैसे जैसे अंदर में आने लगेगी, वैसे वैसे हमारी भीतर की सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होते, बैटरी रिचार्ज होने लगेगी। ठीक है, तो चले स्वस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ सीधी हो एकदम। आत्मचिंतन से आरंभ करेंगे हम। जैसे जैसे आपको विचार देते जाए, खाली सोचना नहीं है, महसूस करना है। कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतरचक्षु से स्वयं को देखे ब्रुकुटी के मध्य में। एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में मैं आत्मा ज्योति पुंज हूं, चैतन्य शक्ति हूं। मेरी वास्तविकता मैं आत्मा शुद्ध और पवित्र हूं। चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल देख रही हूं कि मेरी वास्तविकता है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वगुण है। चारों ओर शांति के प्रकंपन को महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा सत्चित आनंद स्वरूप हूं। मेरा सत्य स्वरूप, मेरी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। मैं आत्मा सतोगुणी हूं। सतोगुण का प्रभा मंडल अपने चारों ओर विकसित कर रही हूं। मेरा प्रभा मंडल शुद्ध, सात्विक, पवित्र है। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में। अंतरचक्षु से स्वयं को देखते हैं पिता परमात्मा के सन्मुख। जैसे मैं ज्योति पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी दिव्य प्रकाशमान है, तेजोमय है। चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है। परमात्मा शक्ति के ऊर्जा को स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। परमात्मा शक्ति को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूं। वही मेरे माता पिता है, जिसकी सुंदर पालना में मैं पल रही हूं। वही मेरे परम शिक्षक है, जिनकी शिक्षाओं से मैं आत्मा योग्य बन रही हूं। वही मेरे परम सतगुरु है, सर्व संबंधों का सुख उस परमात्मा से ले रही हूं और धीरे धीरे मैं आत्मा स्वयं को ऊर्जावान महसूस कर रही हूं, शक्तिशाली स्वयं को महसूस कर रही हूं। परमात्मा शक्ति से हर कार्य स्वयं सिद्ध हो रहे हैं। धीरे धीरे मैं आत्मा अपनी सारी कमजोरियों को दिव्य शक्ति से परिवर्तन कर रही हूं और सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को भरपूर कर रही हूं। धीरे धीरे मन को वापस वर्तमान में ब्रह्मकोटि की मध्य में स्थित करती हूं। ओम शांति।